हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 49। कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, असत बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्यासीनादिगच्छति। असत्त बुद्धि सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा सन्यासीनादिगच्छति। फिर से, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा सन्यासीनादिगच्छति। एक बार फिर, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा सन्यासीनादिगच्छति। शब्दों का अर्थ देखिए। असक्त बुद्धि यानी आसक्ति रहे। देखो, आसक्त होता है, ये असक्त होता है, ठीक है। इसका मतलब है आसक्ति से रहित, अनासक्त जो बुद्धि होती है, कहाँ पर? सर्वत्र, सभी जगह है, जितने भी वो कार्य करता उसमें उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति रहित बुद्धि। जितात्मा यानी मन के ऊपर संयम रखने वाला। विगत स्पृह मतलब भौतिक इच्छाओं से रहित। ऐसा व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से रहित है, अपने मन पे संयम रख रहा है, चितात्मा है और विगत स्पृह है, और कहीं पर भी उसकी आसक्ति नहीं है। आगे है नैष्कर्म्यम सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धिम का मतलब होता है निष्कर्म की सिद्धि। अब तीन तरह के कर्म होते हैं ना, अकर्म, विकर्म, निष्कर्म, निष्काम कर्म। तो कोई भी कार्य कर रहा है तो वो निष्काम भाव से कर रहा है, यानी निष्कर्म की सिद्धि। और परमम यानी परम संन्यासेना, संन्यास के द्वारा अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद देखिए। भगवान कहते हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की याचना करते हुए गुरु और गौरंग से प्रार्थना करेंगे और मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंचा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। अष्टादशोध्याय संन्यास की सिद्धि उपसंहार श्लोक नंबर 49। आज भगवान संन्यास के विषय में बताना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि चारों ओर से कहीं पर भी आसक्त नहीं है। जितात्मा, जितात्मा मतलब अपने मन पर संयम रखता है। विगत अस्प्रिया भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल रहित है, उसको कोई भी सांसारिक इच्छाएं नहीं है। नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम, जो सबसे ऊंची सिद्धि है, परमा मतलब ऊपर की सिद्धि है। कौन सी? नैष्कर्म्य की सिद्धि है, क्योंकि अगर कर्म हम करेंगे तो बंधन का कार्य बनेंगे, लेकिन नैष्कर्म्य की सिद्धि प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? संन्यास अधिगच्छति, संन्यास के द्वारा प्राप्त करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी संन्यास के विषय में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कार्य करना छोड़ दो तो वो संन्यास है। सच्चा संन्यास क्या है कि आप कार्य भी कर रहे हो लेकिन हृदय में खाली यही सोचते हो कि मुझे अपने कार्य के फल को भोगने की कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही गुण बात श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब आप अंश होते हो ना किसी चीज का, तो आपका सारा जो भी आप कार्य कर रहे हो उसका रिजल्ट जो है वो अंशी के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता है। वो पूरा का पूरा, जैसे अगर पत्ता है, वृक्ष का पत्ता है, तो उसको कोई भी कार्य में वो भी उग रहा है, उसको भी परिश्रम करना पड़ रहा नहीं कर, लेकिन जो भी रिजल्ट है वो सारा का सारा जड़ में जाने का है। कि उसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं, तो हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा भोगने का अधिकार हमें है ही नहीं, साफ साफ प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। वास्तव में हम अगर संन्यास है या कृष्ण भावनामृत यही है कि हम क्या सोचें कि हमारे समस्त कर्मों का फल भगवान को अर्पित होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी संन्यास के विषय में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। यानी कि यदि आप भक्ति में कार्य करते हो और कार्य के समस्त फल जो है वो भगवान को अर्पण करते हो तो वो सन्यास है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है। जब तक जीव अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो कभी संतुष्टि प्राप्त नहीं करता, लेकिन यदि हम हर कार्य का फल भगवान को अर्पण कर देते हैं और भगवान कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं भगवान के लिए, तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है। वास्तव में कार्य कोई भी करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें संतुष्टि चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अंश होकर भी उसको भोगना चाहते हैं इसलिए कभी भी हमारी अंदर से हवस खत्म नहीं होती है। लेकिन अगर वही कार्य हम करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसी मनोवृत्ति से संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा है। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं भोगता नहीं हूँ। जब तक जीव समझता है कि मैं भोगता हूँ तो वो आसक्ति उसके अंदर होती है, लेकिन आज भगवान बता रहे हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र, मतलब हर ओर से उसकी बुद्धि जो है वो आसक्ति रहित होती है। तो इस प्रकार वो किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता, वह भगवान की सेवा के से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद लेने का आदि हो जाता, ना लेने का आदि हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख, दो सुख होते हैं, एक दिव्य होता है एक भौतिक होता है। संसार में हमें जो भी सुख मिलते हैं वो भौतिक सुख होते हैं, और उनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये वास्तव में सुख है ही नहीं। असुखम अनित्यम असुखम लोकम, कि इस संसार में जो भी आपको सुख मिल रहा है ना वास्तव में असुख है। असुख का मतलब है वो सिर्फ आपको दिखते हैं, शुरू में आपको अमृत जैसा लग रहा है, लेकिन वो बाद में क्या हो जाते हैं, जहर हो जाते हैं। तो जहर में सुख नहीं होता है, भले वो उस टाइम पर आप पी रहे हो, आपको किसी अच्छे से ड्रिंक में मिलाकर दिया जाया है, आपको वो अच्छा लग रहा है, लेकिन वास्तविक तो दुखी है ना। तो वो भौतिक सुख कभी भी सुख नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दिव्य सुख की बात हो रही है कि वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदि हो जाता है। फिर उसको और किसी चीज में आनंद आता ही नहीं है। विषय इंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रियों के साथ जो मिलकर ना जो सो काल सुख जो होता है कि बस कहलाने वाला है वो होता नहीं है, उसमें उसको आनंद नहीं आता। सन्यासी को पूर्य कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है। जितने भी काम वो कर रहा है अगर वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा है तो बंधन में नहीं फंसता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास की ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक खूबसूरत बात भगवान ने कहा है, संन्यास समाधि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रया नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यास समाधि गच्छति, कि जो आत्म संयमी है तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, यानी कि उसको हर चीज से कि कोई लगाव नहीं होता है, कोई आसक्ति नहीं है, और वह संन्यास के अभ्यास द्वारा निष्काम। यहाँ पर भगवान ने संन्यास के विषय में बताया, क्यों बताया, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, याद है पहला श्लोक अर्जुन ने क्या कहा था, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनि शूचनम्। हे केशिनि सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ और मैं त्याग में जीवन यानी सन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। पहले इन दोनों को पृथक करके बताओ, त्याग क्या है और सन्यास क्या है। तो अब तक यानी श्लोक नंबर 28 तक भगवान श्री कृष्ण ने त्याग का विषय बताया है कि त्याग का क्या मतलब है, किस कहते हैं, और त्याग को खत्म करने के बाद अब अर्जुन ने क्योंकि दो चीजें पूछी ना, सन्यास भी पूछा है, तो 48 श्लोक तक भगवान ने त्याग बताया और 49 से लेकर 55 तक बस थोड़े से श्लोक जो है वो सन्यास के विषय में बताए हैं। तो आज से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देना शुरू कर रहे हैं कि जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए, मन पर संयम होना चाहिए और किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और भौतिक इच्छाओं से रहित होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर हम संन्यास ग्रहण नहीं करते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, तो यही हुआ ना असक्त बुद्धि, यानी आसक्ति से रहित कर रहे हैं और मन पर संयम है प्लस भौतिक इच्छाएं नहीं है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है। तो शिला प्रभुपाद जी बोले अगर आप संन्यास ग्रहण नहीं भी कर रहे हो तो भी किए संन्यास ग्रहण किए बिना संन्यास ग्रहण किए ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह मनोदशा योग आरूढ़ या योग की सिद्धावस्था कहलाती है। ये है योग आरूढ़, इसको बोलते हैं, जिसमें आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, भौतिक भोग की कोई कामना नहीं होती है, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होती, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जैसा कि तृतीय अध्याय में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 3 टेक्स्ट नंबर 17 में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और देखिए वो वाला श्लोक भगवान कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। बहुत ही सुंदर भगवान कहते हैं, यस्त्वात्मरेति रेवस्यात्, यानी जो लेकिन आत्मरेति यानी आत्मा में आनंद मानता है उसको आत्मा में, यानी अनुवाद देखिए, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और तृप्तश्च मानवा यानी आत्म तृप्तश्च मानवा, मतलब जिसका जीव आत्म साक्षात्कार युक्त है, वो बस उसको शरीर की किसी भी हवस की कोई परवाह नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है लेकिन आत्मा में ही आनंद ले रहा है और उसका जीवन जो है वो आत्म साक्षात्कार युक्त है। और आगे आत्मन्येव च संतुष्ट, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है उसको बाह्य किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती है और वो आत्म तृप्त होता है, संतुष्ट होता है, उसके लिए भगवान कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ करणीय यानी कर्तव्य नहीं रह जाता। बहुत ही सुंदर श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया है कि आत्म संयम यानी जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो भगवान को सरेंडर हो जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, तो वो उसको कोई भौतिक कार्य रह नहीं जाता उसके लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता, फिर उसके लिए नियत कर्म नहीं रह जाते, वो सिर्फ भगवान के आदेश का पालन करता है। कृष्ण भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मैल तुरंत ही धुल जाता है। जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है, यानी कि हृदय की मलिनता, जो हृदय में भौतिक आसक्ति है, वो फटाफट जब कृष्ण भावना भावित हो जाता है कोई, तो वो समाप्त हो जाती है। वैसे तो इसको खत्म करने के लिए हजारों हजारों यज्ञ करने पड़ते हैं। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैसे तो ये स्टेज प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यदि हम पूरा का पूरा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, तो इस तरह से शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त के उसको भगवान के साथ अपना दासत्व, दास भाव जो हमारा संबंध है, उससे वो आश्वस्त होता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अतएव वैदिक आदेश के प्रति उसका कर्तव्य निषेध हो जाता है, उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, यानी कि उसको ये पता चल जाता है ना कि मेरा रियल कार्य क्या है, मुझे क्या करना है, तो फिर वैदिक आदेशानुसार उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही उसे सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभन में कोई आनंद मिलता है, यानी कि उसको भौतिक कार्य, भौतिक शरीर, भौतिक अवस्थाओं में कोई रुचि नहीं होती है और किसी भी चीज में वो आनंद नहीं मिलता है, सिर्फ और किसी भी चीज के प्रलोभन में भी उसको कोई आनंद नहीं मिलता है। तो श्री प्रभुपाद जी आज के श्लोक में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यस्त्वात् स्मरति स्मरति ये वस्यात्, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रहता, क्योंकि वो सारा का सारा कार्य क्यों कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है, तो भय कोई नहीं रहता उसको अपने कर्म में गिरने का या बंधन का, कोई भी उसको भय नहीं रहता। तो भगवान ने यहाँ पर संन्यास के विषय में बताया है, लेकिन श्री प्रभुपाद ने कहा कि यदि हम संन्यास ग्रहण नहीं भी करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, तो भी संन्यास की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कैसे होता है, इसके विषय में आज हम एक विशेष कथा सुनेंगे जो कि एक राजा की है। वो वास्तव में राजा है, ग्रस्त है, लेकिन पूर्ण सन्यासी है। वो राजा, उसका पुत्र, उसकी पत्नी सभी बहुत ही महान सन्यासी होते हैं। जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ना, सिर्फ थ्योरी बता रहे हैं कि ऐसा सन्यासी होता है जिसको विगत स्प्रह, अपनी कर्मों में कोई आसक्ति नहीं होती है, जितात्मा होता है, तो उसमें अर्जुन और कृष्ण उसकी परीक्षा लेते हैं, यानी भगवान अर्जुन को प्रैक्टिकली बताते हैं कि वास्तव में सन्यासी कैसा होता है। ये स्टोरी भगवद गीता से अलग नहीं है, क्योंकि जैमिनी महाभारत में ये संवाद आता है कि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो एक रियल सन्यासी कैसा होता है। एक राजा था, उसका नाम था मयूरध्वज। तो भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो भगवान खुद बनते हैं ब्राह्मण और अर्जुन को बनाते हैं अपना शिष्य, यानी दोनों ब्राह्मण हैं अर्जुन और कृष्ण, ब्राह्मण के रूप में उस राजा के पास जाते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। उस समय राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और ब्राह्मण और उनका शिष्य यानी कृष्ण और अर्जुन उस यज्ञशाला में आए और राजा ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन फिर भी ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, यानी प्रणाम से पहले ही ब्राह्मण कौन, कृष्ण, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण हो। राजन, आपको देखना चाहिए ना कि मैं ब्राह्मण हूँ और अपने शिष्य सहित आपकी सभा में आया हूँ, आपको हमारी ओर देखना चाहिए, हम जाहिर सी बात है आपके पास आए हैं तो कोई याचना लेकर आए होंगे। तो महाराज ने कहा, देखिए कितना देखने में तो वो महाराज है लेकिन ग्रस्त है, लेकिन कितना बड़ा सन्यासी है। उसने कहा, महाराज, ब्राह्मण को बोला, ब्राह्मण मैं अभी आपको प्रणाम करने ही वाला था, मैं आपको प्रणाम करना करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपने मुझे स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दे दिया। ये क्या बात हुई? आपने बगैर मेरे प्रणाम के मुझे आशीर्वाद दिया है। हे ब्राह्मण देवता, यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करता है और प्रणाम के बगैर ही वो उसको आशीर्वाद दे देता है, तो वो शाप की तरह होता है। फिर उसको उसे पृथक शाप देने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे ही वो आशीर्वाद ही शाप बन जाता है, क्योंकि प्रणाम तो किया ही नहीं उसने। इसलिए आपने ये उचित नहीं किया। मैंने प्रणाम नहीं किया और आपने मुझे पहले ही आशीर्वाद दे दिया। इतना कहकर राजा ब्राह्मण के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण, इस मेरी यज्ञशाला में आप अपने शिष्य के साथ अपने पवित्र चरणों को के साथ पधारे हो, तो मुझे आज्ञा करो कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, मैं अयोग्य हूँ आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन आप मुझे आदेश करिए, जो आप चाहोगे मैं उसको देने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि आपने बहुत कृपा की है मुझे दर्शन देकर, तो मैं आपको संतुष्ट करने के लिए पूरा पूरा प्रयास करूंगा। अब ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण कौन थे? कृष्ण, कृष्ण के रूप में ब्राह्मण है, और वह कह रहे हैं कि राजन, यदि हम किसी ब्राह्मण को चाहिए कि यदि वो कोई याचना लेकर राजा के पास जाता है, अपने किसी काम से जाता है, तो जाते ही उसे डायरेक्ट से आशीर्वाद देना चाहिए, उसको मतलब प्रणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट से आशीर्वाद देना चाहिए, ये विधि है। और दूसरे वर्ण के जो लोग हैं, जैसे क्षत्रिय शूद्र इत्यादि, वो जब राजा के पास जाते हैं तो कोई भी कार्य से जाते हैं, तो उन्हें सबसे पहले राजा को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जब यदि अपने कोई कार्य से आता है तो उसे डायरेक्ट से आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं आपके पास याचना लेकर आया हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, कोई कार्य लेकर आया हूँ, इससे मैंने आपको आते ही आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके किसी कार्य आऊं, आपके लिए कोई सेवा कर पाऊंगा, आप मुझे आदेश कीजिए, मैं अपना संपूर्ण धन एवं प्राण देकर भी आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। फिर ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण कौन थे? कृष्ण, और कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण के रूप में थे और बोला, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपने पुत्र का विवाह करना चाहता था, तो मैं आपके मैंने सुना था कि आपके इस शहर में एक कृष्ण शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता है, उसकी एक बहुत ही सुशील कन्या है, उसके साथ मुझे अपने बेटे की शादी करानी है, तो मैं उसके साथ साथ यहाँ पर आ रहा था। तो ब्राह्मण ने कहा, फिर आपका पुत्र कहाँ है? तो बोला, वही तो मेरी समस्या है, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में जंगल पड़ता है ना, धर्मपुर से यहाँ तक आ रहा था, तो रास्ते में जंगल में एक बहुत भयानक शेर था और उसने मेरे पुत्र को पकड़ लिया और वो उसको खाने जा रहा था, तो मैंने उससे बहुत कहा कि आप मेरे पुत्र को मत खाइए, आप इसकी बदली में मुझे खा लीजिए, ताकि ना मैं तो अभी इतना बूढ़ा भी हो गया हूँ, और अगर मेरा पुत्र मर गया तो फिर मैं नरक में चला जाऊंगा, क्योंकि कोई भी मेरे खाना में दूसरा नहीं है जो पिंड तर्पण छाद इत्यादि करेगा, तो आप इसकी बदली में मुझे खा लो, क्योंकि मैं वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो उस शेर ने कहा कि हम जो हिंसक प्राणी है ना, जैसे सांप शेर इत्यादि जो मारते हैं लोग को, वो अपनी मर्जी से किसी को नहीं मारते हैं, जिसके दिन पूरे हो जाते हैं ना उसी को मारते हैं, यानी कि आपका अभी इतना सारा समय बचा हुआ है, आपके बेटे का समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं उसको मार रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि नहीं, आप फिर भी उसको नहीं मारिए ना, आप मुझे खा लीजिए। तो बोला, एक कोई तरीका बताओ। मैंने उसको बोला कि देखो, मेरा तो फिर जीवन ही बिगड़ जाएगा, मतलब मेरी तो कोई गति नहीं होगी अगर मेरा बेटा मर जाएगा, तो आप कोई तरीका बताओ। तो उसने, शेर ने मुझे ये कहा कि यदि आप राजा मयूरध्वज के शरीर का एक आधा भाग लेकर आओगे, तो फिर आप मुझे वो दे दीजिएगा और मैं आपको आपका बेटा दे दूंगा। आप और वैसे भी शेर ने कहा कि मैंने तो, क्योंकि कुछ अभी तक ब्राह्मण हूँ, रुखी सुखी खाता हूँ, तो मेरे शरीर में कोई पुष्टि नहीं है। तो बोला, राजा मयूरध्वज जो है, वो उसका खान पान इतना अच्छा है और वो इतना मतलब पुष्ट है उसका शरीर, तो उसको मैं खाऊंगा तो आनंद आएगा, आपको खा के मुझे कोई आनंद भी नहीं आएगा, आप जाओ राजा को लेकर आओ, उसका आधा भाग लेकर आओ। तो राजा ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है, तो ठीक है, मैं आपको अपने शरीर का आधा भाग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं इस यज्ञ को जो आधा रह गया उसको कंप्लीट करूँ। फिर राजा ने उस यज्ञ को कंप्लीट किया और अपना उसका एक पुत्र था सुशर्मा नाम से, और नहीं अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, यानी ये काम कर दिया कि पीछे राज भी चलता रहे। और फिर ब्राह्मण को बोला कि ठीक है, अब मैं आपको अपने शरीर का आधा अंग देता हूँ। तो दो खंभे खड़े कर दिए और बीचों बीच जो है ना जल्लादों को ये आर्डर दिया कि मुझे मेरे शरीर को काट के आप एक भाग ब्राह्मण को दे दीजिएगा। जब वहां पर सभा में उपस्थित जितने भी दूसरे लोग थे, उन्होंने जब ब्राह्मण की ये बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और सोचने लगे ये काल के समान इतना क्रूर ब्राह्मण कहाँ से आ गया है, जो हमारे इतने अच्छे इतने सत्यवादी राजा के प्राण हरने के लिए आया है। लेकिन राजा ने कहा, देखो आप सब इस ब्राह्मण के विषय में कुछ भी कटु वचन मत कहिएगा, उसका आदर करिएगा, उसका अनादर ना करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर हम मेरा दान देना ही व्यर्थ हो जाएगा। वो सब सभाजन ब्राह्मण को नहीं कह रहे थे, लेकिन आपस में इतनी बातें कर रहे थे कि कितना निर्लज है ये याचक कि राजा के सामने आकर उसी से उसका शरीर का आधा भाग मांग रहा है। मतलब मांगने में उसको शर्म भी नहीं आ रही है कि मैं राजा से क्या मांग रहा हूँ, और हमारे राजा कितने सत्यवादी हैं कि वो उस याचक की इतनी बड़ी मांग को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। परंतु राजा सहर्ष अपने शरीर को कटवाने के लिए तैयार हो गया। इतने में उसकी रानी आ गई और कहने लगी, हे स्वामी, शेर ने आपके शरीर का आधा अंग मांगा है, और मैं क्योंकि आपकी पत्नी हूँ, तो पत्नी क्योंकि पति की अर्धांगनी होती है, तो आपका आधा अंग तो मैं हूँ। आप आधा अंग हो यानी अर्धांगनी मैं हूँ और आधा अंग आप हो, तो आप यदि अपने शरीर को कटवाओगे तो आधे का आधा यानी क्वार्टर हिस्सा बच जाएगा ना, चतुर्थ अंग बच जाएगा। तो आप ऐसा मत करो, मैं आधा अंग हूँ, मुझे ही दे दो शेर को, मैं चली जाती हूँ और आप अपने शरीर को मत कटवाओ। इतना जब ब्राह्मण ने सुना, यानी कृष्ण ने जब ये सुना कि अब तो राजा बच जाएगा, और तो फिर उसने एक नया खेल, ये तो भगवान की रचाई हुई माया है। तो भगवान ने ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे शेर ने कहा था कि आप राजा का सीधा अंग लेकर आना, क्योंकि पत्नी जो है वो वाम अंग कहलाता है, बायां अंग कहलाता है ना, तो आप राजा का सीधा अंग लेकर आना, उसका बायां अंग नहीं लेकर आना, तो मुझे राजा का ही चाहिए, आप नहीं चाहिए हो मुझे। तो इतने में ये जब चल रहा था तो राजा का बेटा जिसका नाम था साम्रध्वज, वो सामने आया और कहने लगा, साम्रध्वज अपने पिता की कीर्ति बखान करते हुए कहते हैं कि मेरा पिता बहुत ही सत्यवादी राजा है, और जो पिता होता है वही पुत्र होता है, क्योंकि पिता का शरीर का आधा अंग पुत्र होता है, इसलिए तो आप मेरे पिता को छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आधा भाग हूँ अपने पिता के शरीर का, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और ब्राह्मण को कहने लगा कि मैं क्योंकि तरुण हूँ, युवा अवस्था में हूँ, तो मुझे देखकर तो शेर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और मुझे भी कीर्ति मिलेगी, क्योंकि भीष्म परशुराम सबने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके महान यश प्राप्त किया था। इतना सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण कौन, कृष्ण, देखो कृष्ण कैसे खेल को चेंज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे रच रहे हैं खेल को, कह रहे हैं कि ठीक है बेटा, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पुत्र तो आधा भाग होता है पिता के शरीर का, लेकिन उस शेर के वचन को तो सुनो, उसने मुझे ये कहा था कि उस राजा मयूरध्वज की पत्नी और पुत्र से भिन्न, यानी उनकी बदली में वो नहीं लेकर आना, बल्कि उस राजा मयूरध्वज के शरीर का आधा हिस्सा चीर के लेकर आना, इसलिए मुझे आपके पिता के शरीर का ही हिस्सा चाहिए। ठीक है, समझ में आया, ये कहा था शेर ने। अब तुम बताओ मुझ जैसा व्यक्ति इस शेर के इस कथन को कैसे निकाल सकता है, क्योंकि अगर मैं नहीं लेकर जाऊंगा तुम्हारे पिता के आधे शरीर का भाग, तो फिर वो तो मेरे बेटे को खा जाएगा। फिर महाराज ने अपने पत्नी और पुत्र को मना कर दिया, बोला नहीं ये सेवा मेरी है तो मैं ही करूंगा। तो तुम अपने पत्नी और पुत्र को आरा दे दिया और बोला कि अब मेरे शरीर को चीरो और इसको एक आधा भाग दे दो। उस समय इंद्र और उसके साथ समस्त देवता इससे भगवान के इस खेल को देख रहे थे और महाराज खुद भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगे, राम केशव, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र नाम का उच्चारण करते करते प्राण देने के लिए तत्पर हुए। जो सत्पुरुष थे वो इस सबको देख कर बहुत ज्ञानी हो रही थी सबको कि कैसा राजा है और ये कैसा ब्राह्मण है, ये कैसा खेल है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा की आज्ञा से पत्नी और पुत्र मिलकर राजा को चीरने लगे और पत्नी ने ब्राह्मण को प्रणाम करते हुए कहा कि अब मैं आपके लिए अपने शरीर के, अपने पति के शरीर के दो भाग करने वाली हूँ। जिस प्रकार नरसिंह भगवान खंभे को चीरकर बाहर निकले थे, उसी प्रकार मैं अपने पति के शरीर के दो टुकड़े करने वाली हूँ। और जब उसके पति के शरीर के दो टुकड़े करने के लिए आरा चलाया, सीधा सीधा जैसे सीधी मांग होती ना, बीच से चलाया, दो हिस्से हो रहे थे और दो हिस्से हो गए, मतलब गर्दन तक छुरी आ गई, तो जो बायां अंग था ना राजा का, उसकी आंख से आंसू निकलने लगा। ये आंसू को देखकर ब्राह्मण ने कहा कि ये राजा मुझे दुखी होकर दान दे रहा है, मतलब वो रो रहा है, दुखी होकर दान दे रहा है, मुझे ये वाला दान स्वीकार ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं ये वाला दान। आधा मतलब गर्दन काट दी उसने और बोला अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये सुनकर वो जा रहा था तो पत्नी ने बोला नहीं नहीं आप चाहिए नहीं, मैं अपने पति से पूछती हूँ कि वो दुखी क्यों हो रहे हैं, ब्राह्मण को दान देते वक्त तो दुखी नहीं होना चाहिए। तो पत्नी ने आरा निकाल के फिर से अपने पति के शरीर के जो सर था उसको वापस से मिलाया और पति से कहा कि ब्राह्मण देवता अभी दान नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपने रोया है, आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो पति ने जो कि अब मिला दिया था ना वापस से, तो बात करना शुरू कर दिया और कहा कि नहीं नहीं मैं इसलिए थोड़ी ना रो रहा हूँ कि मैं दुखी होकर दान दे रहा हूँ। देखो मेरे शरीर का आपको राइट दायां भाग चाहिए ना और आंसू बाएं भाग से निकला है, वो इसलिए थोड़े निकला है कि मैं दुखी हूं, बल्कि इसलिए निकला है कि दायां भाग तो ब्राह्मण की सेवा में लगेगा मगर मेरे शरीर का बायां भाग जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, उसको कोई सेवा नहीं मिल रही है, इसलिए दुखी हो रहा हूं क्योंकि वो शरीर का पार्ट जाया हो रहा है। देखा कितना कठिन है भगवान को प्रसन्न करना, वो अपने भक्तों की कैसी कैसी परीक्षाएं लेते हैं। जब भगवान ने ये सुना तो भगवान स्वयं राजा के सामने प्रकट हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस राजा मयूर ध्वज को कहा, राजन तुम महान हो। भगवान ने उसको कहा कि मैं आपकी सेवा से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ हूँ क्योंकि आपने मेरी आज्ञा से अपने शरीर का भी भान नहीं किया और उस शरीर को काट कर मुझे देने के लिए आप तत्पर हो गए। अब मैं क्या करूँगा, आपके यज्ञ में अभी आप जो कार्य करोगे उसमें कर्मचारी बनकर कार्य करूंगा। देखा अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अभी तुम्हारा नौकर की तरह काम करूंगा इस यज्ञ में। तब ब्राह्मण बोले, वसुदेव लक्ष्मीपति हे जगतपति, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे केशव यदि आप प्रसन्न हैं तो हे गोविंद अब मेरे यज्ञ करने से क्या लाभ, आपका नाम लेने पर, आपके दर्शन करने पर, आपको प्रणाम करने पर करोड़ों यज्ञ का पुण्य वैसे ही प्राप्त हो जाता है। हाँ यदि आपका दर्शन करने के बाद भी मेरे मन में कुछ यज्ञ इत्यादि करने की अभिलाषा हो जाएगी तो मैं यमराज के दंड का पात्र बनूंगा क्योंकि मैं आपकी महानता को नकार कर किसी और चीज को इम्पोर्टेंस दूंगा ना। आज तो मेरे कोई बहुत बड़े भाग्य उदय हुए हैं कि मुझे आप दोनों के नर नारायण के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे कमलनयन आपको मेरा प्रणाम है, आप जगत गुरु हैं, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, आप सृष्टि के कर्ता पालक और संहारक हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। नमस्ते पुंडरीकाक्षे ब्रह्मणे गुरुवे नमः ब्रह्मगोलोकसाहस्त्रे गोविंदाए नमो नमः। आप ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान द्वारा ही समझ में आते हैं। आप काल स्वरूप हैं, आपको मेरा कोटि कोटि अभिवादन है। ये दृश्य जगत आपका ही स्वरूप है। श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि परंपरा को प्रारंभ करने वाले हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। उस समय जब राजा ने भगवान श्री मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वे जगदीश्वर अर्जुन को राजा की भक्ति का दर्शन कराने के बाद उस रत्नपुर राजा में 3 रात तक ठहरे। फिर राजा ने अर्जुन को गले लगाया और अपनी सारी संपत्ति और अपना प्राण इत्यादि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये होता है सन्यासी। भगवद गीता में आज भगवान श्री कृष्ण ने जिस सन्यासी की बात कही है कि वो होता तो भले सन्यासी नहीं है, गृहस्थ होता है, क्षत्रिय होता है या कुछ भी, लेकिन वो सारा का सारा समर्पित होता है भगवान के लिए। अपने अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता, अपने धन धान्य अपने पति पुत्रों किसी चीज की परवाह नहीं करता, केवल भगवान को प्रसन्न करना ही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। तो भगवान ने अर्जुन को ये जो थ्योरी बताई ना भगवद गीता में, वही प्रैक्टिकल करके आज दिखाया। तो भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि सन्यासी कैसा होता है। राजा मयूर ध्वज के पत्नी भी सन्यासी, उसका पुत्र भी सन्यासी, स्वयं राजा हालांकि राज कर रहे थे लेकिन इतना उनके अंदर इतना महान त्याग का था, सन्यास का जो भाव था वो भगवान अर्जुन को यहाँ दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से हमने सुनी एक व्यावहारिक प्रैक्टिकल घटना एक राजा ये राज ऋषि के जीवन की, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में बताया है कि वास्तविक सन्यासी कैसा होता है। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जो असक्त होता है, बिल्कुल किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं होती है जिसकी, और जितात्मा विगत प्रया, आत्मा संयमी होता है और अपने भौतिक भोगों की कोई परवाह नहीं करता। ये नहीं सोचता कि मैं ये करूंगा अगर भगवान की सेवा के लिए तो मैं ये चीजों से रहित अपने जीवन तक को दाव पे लगा देता है। निष्कर्मी सिद्धि परमा, और वो जो है वो निष्काम कर्म की संन्यास के अभ्यास के कर्म फल से मुक्त हो जाता है। जितने भी कर्म का फल होता है उससे मुक्त हो जाता है और परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भगवान ने कहा, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।